ओम शांति। बाबा कहते हैं ना, ये सृष्टि रूपी रंगमंच है जहाँ हम सभी नाटक करने आए हैं। उसी तरह क्या करते हैं, करते रहो ना नाटक। तो आज हमारे बीच ब्रह्मा कुमारी सोमप्रभा बहन जी हैं। इनको भी बाबा का जो परिचय है तो लौकिक और अलौकिक जन्म कर्नाटक में प्राप्त हुआ है, मैसूर में। आपको बाबा ने 1968 में अपना बच्चा बनाया और एक ही साल में बाबा पर पूरा न्योछावर होकर 1969 में आपने अपना जीवन बाबा की सेवाओं के लिए और बाबा की प्यार पर समर्पित कर दिया है। 38 सालों से आप सोलापुर सब जोन के अंतर्गत सेवाएं दे रहे हैं। भारत में कई प्रांतों में तथा देश विदेशों में, जैसे भारत में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, चेन्नई प्रदेश, चेन्नई, महाराष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मॉरिशियस, रेन्यूल इत्यादि देशों में भी आपने अपनी सेवाएं दी हैं। धार्मिक प्रोग्राम में एग्जीक्यूटिव मेंबर तथा महाराष्ट्र जोन के जोनल कोऑर्डिनेटर, महिला विंग, एजुकेशनल विंग, मेडिकल, रूरल डेवलपमेंट, सोशल सर्विस एंड रिलीजियस विंग के कई रैलियों के आप संचालन कर चुके हैं। लगभग 40 स्थानों पर सेवा केंद्र, उपसेवा केंद्र तथा लगभग 300 गीता पाठशालाओं में इस समय आप सेवाएं दे रहे हैं। तो हम सभी सोमप्रभा बहन जी से सुनेंगे, जैसा लक्ष्य वैसे लक्षण। तो हम सभी स्वागत करेंगे।
ओम शांति। सभी जागृत होकर के बोलिए ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। क्योंकि समय भी ऐसा है, थोड़ा बहुत अपना प्रभाव बीच बीच में डालता रहता है, इसीलिए आप सबसे थोड़ा मैं निवेदन करती हूँ। एक सेकेंड के लिए सभी उठ के खड़े हो जाएंगे, क्योंकि बहुत समय से बैठे हैं, एक ही जगह में बहुत समय से बैठे हैं। भले हम बाबा को याद कर रहे थे, फिर भी कभी कभी याद करते करते हम डायरेक्ट परम धाम में जाके बैठ जाते हैं, इसीलिए थोड़ा खड़े हो गए। हाथ भी थोड़ा आप ऊपर उठाइए, थोड़ा एक्सरसाइज भी हो जाता है, थोड़ा हाथ ऊपर नीचे कीजिए। ओके, थैंक यू। अभी सभी फ्रेश हो गए होंगे अपने अपने स्थान पर, बैठ जाइए। अभी अभी हम सुन रहे थे हमारे प्यारे बाबा ने हमें बहुत सुंदर मंत्र दिया है। कौन सा मंत्र दिया है? सोचो भला करो भला, क्योंकि जैसे हम सोचेंगे वैसे ही हम कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म करेंगे, हम सबको ये सृष्टि का नियम अथवा इस देह के कर्मेंद्रियों का नियम मालूम है, तो इसी बात पर आज का विषय भी है। आप सभी अभी बहन जी से सुन रहे थे कि जैसा लक्ष्य वैसे लक्षण, भले लक्ष्य एक है परंतु जैसे हम लक्ष्य रखते हैं उस अनुसार हम कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म करते हैं, उसके आधार से लक्षण बन जाते हैं। जैसे श्रीमद् भगवद् गीता के शास्त्र के अनुसार और वैसे भी लौकिक में भी मुहावरे भी कहा जाता है कि नर ऐसे कर्म करे जिससे श्री नारायण बन जाए, नारी ऐसे कर्म करे जिससे श्री लक्ष्मी बन जाए। केवल हम अभी तक सुनते आए थे अथवा पढ़ते आए थे, परंतु हमारे प्यारे प्यारे बाप दादा ने हमें इस लक्ष्य को किस प्रकार से प्रैक्टिकल में लाना है वो सिखा दिया। उसका सच्चा अर्थ हमें समझा दिया है। तो वैसे भी कहा जाता है जैसा बीज वैसा वृक्ष, जैसे करनी वैसे भरनी। बाबा ने भी इस बात को हमें स्पष्ट करके बताया है, सिखाया है, बच्चे आप जिस प्रकार के कर्म करोगे तो आपको देखकर दूसरे भी सीखेंगे करेंगे। तो वास्तव में देखा जाए, हम सबको पता है जिस प्रकार का बीज हम बोते हैं उस प्रकार का ही पेड़ पौधे उगते हैं और वैसे ही फल मिलता है। जैसे हम कांटे का बीज बोएंगे तो उससे आम निकलेगा, आम निकलेगा या एप्पल निकलेगा या कोई और धान निकलेंगे? निकलेंगे, उत्तर तो दीजिए। क्योंकि आप उत्तर देंगे तो हमको भी थोड़ा सा लगेगा कि आप सचमुच सब बातें ध्यान से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। तो उसी अनुसार जब हम आम का बीज बोते हैं अथवा एप्पल का अथवा कोई धानी का बीज उगाते हैं तो उससे कौन सा पैदाइश होती है, क्या निकलता है? तो जैसे आम का बीज बोया तो वैसे ही आम का पेड़ उगता है और वैसे ही फल प्राप्त होता है। तो उसी अनुसार जिस प्रकार के धान्य हम बोते हैं वैसे ही हमें उस प्रकार के धान्य प्राप्त होते हैं। तो यही बात हमारे इस ज्ञान के जीवन में भी लागू होती है कि जैसे हम कर्म करेंगे वैसे ही हमें फल प्राप्त होगा। यानी जिस प्रकार से लक्ष्य हम रख करके कर्म करते हैं उस अनुसार हमारा लक्षण भी होगा। वो कैसे वो भी हम जानते हैं, इसीलिए कोई कवि ने कहा है कि यू आर द आर्किटेक्ट ऑफ योर ओन डेस्टिनी, आप ही आपके कर्म के भाग्य के निर्माते हो। जिस प्रकार से हम कर्म करते हैं इन हाथों से उस प्रकार से हमारा भाग्य बनता है। कभी कभी हम कोई भविष्यकार होते हैं उनके पास जाकर के हम हाथ दिखाते हैं, हम ये जानने चाहते हैं कि हमारे भविष्य क्या होगा कैसे होगा, परंतु अंदर तो हमें ये आस जरूर बनी रहती है जो भी भविष्यकार मेरा हाथ देख रहा है भविष्य सुनाएगा, मेरे प्रति अच्छा ही सुनाए, अच्छा ही कुछ बोले, मेरा कल्याण होने वाला है, कुछ शुभ होने वाला है, वही बात सुनाए, ऐसे अंदर से हमारा लक्ष्य रहता है। यदि वो थोड़ा बहुत अशुभ बातें बता दिए तो हम घबरा जाते हैं, तो उसके लिए हम भविष्यकार से यहाँ तक पूछते हैं जो कुछ करने के लिए आप कहो हम तैयार है, परंतु ये जो भी कुछ पीड़ा हमें उत्पन्न होने वाला है आगे आने वाला है वो सब दूर हो जाए। परंतु वास्तव में देखा जाए जो भविष्यकार हमारा भविष्य सुना रहा है समझिए, वो भी अपने कर्म के अनुसार ही अपना फल पाता है। तो हमारे कर्म को अथवा कर्म के फल को बदलने का अधिकार किसी को भी नहीं। इसीलिए कहा गया जैसा कर्म वैसा फल वैसा प्रारब्ध। तो हमें अपने कर्मों के ऊपर पूरा ध्यान चाहिए। तो कर्म भी वैसे देखा जाए मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, परंतु कर्म करने से पहले हमारा कुछ तो लक्ष्य जरूर रहता है, लक्ष्य के अनुसार हमारा संकल्प चलता है। पहले संकल्प चलता है, फिर संकल्प के आधार से फिर वाणी, फिर कर्म में हम आ जाते हैं। एक यूनिवर्सल लॉ है, इसलिए ये भी कहा गया है एज यू थिंक सो यू बिकम, जैसे तुम सोचोगे वैसे ही तुम बनोगे। तो इसीलिए जो भी कुछ हमने लक्ष्य रखा है वो लक्ष्य भी श्रेष्ठ होना चाहिए, तो उस अनुसार ही हमारा संकल्प उत्पन्न होते हैं। जैसे संकल्प उत्पन्न हुआ उसी अनुसार हमारी वाणी और हमारे कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म बन जाता है। फिर वो कर्म करते करते उसी अनुसार हम व्यवहार में आ जाते हैं। जैसे हमारा व्यवहार अन्य आत्माओं के साथ होता है तो उसी अनुसार धीरे धीरे वो हमारा स्वभाव और संस्कार बन जाते हैं। इसीलिए कभी कभी हम स्वयं भी कहते हैं, कभी कुछ ऐसे गलती हो गई या कुछ ऐसे किसी को हमारे द्वारा कुछ दुख पहुंच गया या तो कुछ हुआ, तो हमारे मुख से ऑटोमेटिकली निकलता है कि अरे मैं कितना ट्राई करती हूँ अथवा करता हूँ कि मैं अच्छी तरह से चलूं, परंतु क्या करूं, मैं मेरा स्वभाव ही ऐसा बन गया है अथवा मेरा संस्कार ही ऐसे बन गए हैं। परंतु वास्तव में हम सब जो भी बाबा के बच्चे, बाबा के बने हुए हैं, भले हम आज यहां पर बैठे हैं अथवा बाबा के बच्चे सभी अपने अपने सेवा केंद्र पर है अथवा अपने अपने घरों में रह करके पुरुषार्थ कर रहे हैं, परंतु कोई भी हो, जो भी बाबा के बच्चे बन गए तो वे बहुत बहुत सौभाग्यशाली आत्माएं हैं। परंतु केवल सौभाग्यशाली ही नहीं है, तो हम और आप सभी अनुभव कर रहे हैं, एक कोई वर्णन करने की बात नहीं है, यह स्वयं अनुभव की बात है कि हम पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं हैं, है या नहीं है? है, हम सब पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं हैं। देखिए, अप्रैल मास है, गर्मी का वातावरण है, कभी किसी को छुट्टी नहीं मिली होगी अपने कामकाज से, कभी किसी को घर का बंधन होते हुए भी हम निकल करके आ गए होंगे, कभी बच्चों की एग्जाम होगा तो कई बच्चे एग्जाम छोड़ करके भी आ गए होंगे, तो क्यों और कितनी दूर दूर से हम यहाँ पर पहुंचे हैं और अभी 10 तारीख तक भी हम सब बाबा के बच्चे पहुंचने वाले हैं, क्यों? क्यों? क्योंकि हम सब हमारे प्यारे प्यारे बाप दादा के कौन हैं? लाडले बच्चे हैं। बहुत बहुत पद्मा पदम सौभाग्यशाली आत्माएं हैं, है ऐसे लगता है आप सबको? लगता है, केवल लगता है या खुद आप लोग समझते हैं, अनुभव करते हैं कि ऐसे करते हैं? तो थोड़ा सा हाथ उठाइए, सभी ऐसे हाथ उठाइए, तो ऐसे अपने तरफ कीजिए, तो अपने आप को शाबाश करके लीजिए, लीजिए जोर जोर से करके लीजिए, क्योंकि हम कोई ऐसी वैसी आत्माएं नहीं हैं कि दुनिया में कितने करोड़ों आत्माएं हैं, तो बाबा ने पहले से ही हमको बता दिया है कि आप बच्चे कोटों में कोऊ में भी को मेरे बने हुए हो, तो हम कितने खुश होने चाहिए, कितने नशे से, उमंग से, उत्साह से सदैव नाचते रहने चाहिए। बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं ना, जिन बच्चों को नशा रहता है, खुशी रहती है, वो बच्चे मन ही मन में नाचते रहते हैं। कभी देखो बाबा के ऐसे खुशी के गीत बजते हैं, हमारी आदरणीय दादियां भी हमको गीत सुनाकर कितने खुशी से नचाते हैं, कितना अच्छा लगता है। तो उस भाग्य को भी यदि हम याद करते रहेंगे, ये लक्ष्य रख करके हम चलेंगे, तो सचमुच हमारे जीवन भी बहुत खुशहाल बन जाएगा। बाप दादा भी हमारे से यही चाहते हैं कि बच्चे आप भी स्वयं खुश नमहा रहो और आपके द्वारा दूसरों को भी खुश रखो, खुश रहो और खुशी बांटो। तो ये सबसे बड़ा काम है। जैसे अभी हम सुन रहे थे ना, सोचो भला करो भला। तो भला सोचना और करना क्या चीज है? तो हमारा लक्ष्य तो यही होना चाहिए कि सदैव खुद के प्रति और सबके प्रति, सभी आत्माओं के प्रति, चाहे ज्ञान में चलने वाले हमारे दैवी परिवार बाबा के बच्चे क्यों नहीं हो, अथवा हमारे लौकिक परिवार में भले ज्ञान न समझने वाले बच्चे क्यों नहीं हो, आखिर तो सारा विश्व हमारा ही परिवार है। भले दैवी परिवार हम अपने आप को कहलाते हैं, दूसरे सभी भी आखिर तो आत्माएं शिव बाबा के ही बच्चे हैं ना। भले माया के वशीभूत हो गए हैं, वो बात अलग है, हम भी तो माया के वशीभूत ही थे, हमको भी बाबा का ज्ञान मिला जिस कारण से हम माया से छूट करके अभी बाबा के बनकर हम स्वयं की भला और अन्य आत्माओं की भला करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। इन फिर भी बाबा हम बच्चों को कहते हैं, ऐसे बच्चों को भी कभी कभी माया पकड़ लेती है। तो इसलिए सदैव हमारा लक्ष्य ये रहना चाहिए, कुछ भी हो जाए कभी भी हम बाबा का हाथ नहीं छोड़ना है। ये हमारे ब्राह्मण जीवन का पहला लक्ष्य होना चाहिए। कौन सा लक्ष्य हम रखें अपने जीवन में? भले हम सबको सुनाते हैं हमारा लक्ष्य है नर से नारायण बनना, नारी से श्री लक्ष्मी बनना, परंतु वो तो कब बनेंगे, कब बनेंगे? भविष्य में, सत्युगी दुनिया में, प्रैक्टिकल रूप में हम श्री लक्ष्मी श्री नारायण के समान बनेंगे। भले हमें मालूम है फर्स्ट नंबर लक्ष्मी नारायण तो हमारे प्यारे प्यारे मीठे मीठे ब्रह्मा बाबा और मम्मा है, सेकेंड नंबर थर्ड नंबर वगैरह भी कौन होंगे वो भी थोड़ा बहुत जानते भी होंगे हम लोग, फिर भी बाबा हम सबको भी वही एक लक्ष्य दिया है। तो भले लक्ष्मी नारायण के समान तो हमें बनना ही है, तो यही लक्ष्य रख करके हम इतना पुरुषार्थ हम करते आ रहे हैं। तो इसीलिए ये एक लक्ष्य हमारे जीवन में जरूर होने चाहिए कि मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। कुछ भी हो जाए, कोई भी प्रकार की माया आए, कोई भी प्रकार की समस्याएं आए, कोई भी बात आवे, तकलीफें हो, कुछ भी हो, क्योंकि बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं, जैसे जैसे आप बाबा के बच्चे ज्ञान में आगे बढ़ते जाते हैं, और महारथी बनते जाते हैं, वैसे वैसे माया भी रुस्तुम ते रुस्तुम बन करके आती है। हमारे सामने परीक्षाएं भी बहुत से भिन्न भिन्न प्रकार के आते जाएंगे, परंतु हमारे अंदर हमें देवता बनना है तो दिव्य गुण भी चाहिए। जब हम अपने जीवन में दिव्य गुणों को अपनाएंगे, धारण करेंगे, तभी तो हम प्रैक्टिकल में भी संगम युग पर सबके साथ चल सकेंगे और उनको भी कुछ हम अच्छी बातें दे सकेंगे और भविष्य में भी उच्च पद प्रारब्ध पा सकेंगे। तो इसीलिए सदैव ये लक्ष्य हमारा रहे कि बस एक बाबा के हाथ मैंने पकड़ा है, कभी भी बाबा के हाथ मुझे छोड़ना नहीं है। तो बाबा ने मुझे अंगुली पकड़ करके अभी तक चलाया है, तो इतना पालना दे करके ऊंचा बनाया है, तो कभी भी हम ऐसे बाप को भूलना भी नहीं चाहिए। छोड़ना तो बहुत दूर की बात है। तो ऐसे सदैव हमारे अंदर सबके प्रति शुभ भावना और शुभ कामना भी रहना बहुत जरूरी है, खुद के प्रति भी और अन्य आत्माओं के प्रति भी। तो वैसे दैवी गुणों का लिस्ट तो हम सबको पता है, बहुत से दैवी गुण हैं। उन एक एक गुणों को यदि हम वर्णन करते जाएंगे तो एक एक गुण का भी एक एक विशेष हम वर्णन करके क्लास सुन सकते हैं और उसको अपना करके दूसरों को भी धारणा कराने के लिए हम आगे बढ़ सकते हैं। परंतु समय प्रति समय जिस चीज की जिस गुण की आवश्यकता है उसको अपनाना बाबा ने हमें सिखाया है। जिस समय पर सहनशीलता की आवश्यकता है उस समय पर सहनशीलता का गुण अपनाना, ये भी एक हमारा जीवन का लक्ष्य है। उसके द्वारा ही हमें देवताई लक्षण आएगी। तो उसी प्रकार से बाबा अंतर्मुखता के बारे में भी बताया है और पवित्रता, नम्रता और सबके प्रति सम्मान रखना और साथ साथ सबके आज्ञाकारी, बाबा के आज्ञाकारी और साथ साथ बड़ों के आज्ञाकारी बनकर के चलना और बाबा के पूरे श्रीमत को अपना करके चलना, ऐसे कई दिव्य गुण हमें बाबा ने बताया है। तो उन दिव्य गुणों को समय प्रति समय हम अपने जीवन में अपनाना भी बहुत जरूरी है। तो उसमें तो फर्स्ट पॉइंट बाबा हम बच्चों को ये सिखाया है कि देवी देवताओं का पहला दैवी गुण है पवित्रता। तो आज भी बाबा ने बताया तो भारत कैसा था, भारत पहले सुख शांति संपद समृद्धिवान था। ये भी हमें बाबा ने बताया है कि सुख शांति संपद समृद्धि का फाउंडेशन है पवित्रता। देवी देवताओं का जो लक्षण अथवा गुण उनके चेहरे के द्वारा जो झलकता है वो पवित्रता ही है। तो पहले फर्स्ट दिव्य गुण यदि हम अपना लक्ष्य रखे हैं, श्री लक्ष्मी या श्री नारायण के समान हमें बनना है, तो मन वचन कर्म के द्वारा पवित्रता को अपनाना। तो पवित्रता को अपनाना ही बाबा का पहला श्रीमत है। तो उस श्रीमत को जब हम अपने जीवन में अप्लाई करेंगे तो एक के पीछे एक अपने आप दूसरे दिव्य गुण भी आते जाएंगे। तो एक के साथ एक गुण चैन के समान है। जैसे बुराई भी ऐसे होता है, यदि एक बुरा गुण हमारे जीवन में आ जाता है उसके पीछे और भी कई बुराइयां शुरू हो जाती है। जैसे यदि चोरी करने की आदत है तो चोरी कर लिया तो फिर झूठ बोलना पड़ता है, झूठ बोल करके फिर बाद में छूटने के लिए और भी कुछ अलग अलग प्रकार के कुछ प्लान बनाना पड़ता है, उसके लिए कुछ उल्टा सुलटा सोचना पड़ता है। ऐसे एक अवगुण हमारे अंदर आ गया तो दूसरे भी अवगुण उसके साथ साथ चैन के रूप में बढ़ते जाते हैं। उसी अनुसार यदि हम अपने जीवन में एक अच्छे गुण अपनाने के लिए लक्ष्य रखते हैं तो एक गुण, जैसे अभी मुझे कुछ भी हो जाए बाबा की श्रीमत को फॉलो करना है, ये कि एक लक्ष्य हमने रख लिया अपना लिया तो उसके अंदर सब बातें आ जाती है। तो बाबा की श्रीमत को अपनाना अर्थात हर दिन बाबा हमें जो मुरली में अपने महावाक्य सुनाते हैं तो उन बातों को अच्छी तरह से ध्यान से सुनते हुए उनमें जो आवश्यक बातें हैं, मेरे जीवन में जो कमी कमजोरियां हैं तो उनको हम समझ करके उनको निकालने के लिए बाबा ने हमें क्या बात कौन कौन सी बातें सुना रहे हैं अथवा कौन कौन सी बातें अपनाने के लिए कह रहे हैं तो वो हमें हर दिन ध्यान रख करके उस अनुसार चलना, वास्तव में इसको ही श्रीमद् कहा जाता है। जैसे आज भी हमें विशेष रूप से बाबा ने क्या कहा याद है सबको, बच्चे अधिक से अधिक मेरी याद में रहो, जितना हो सके पूरा समय मुझे याद करो। तो क्यों बाबा कहते हैं, क्योंकि बाबा को पता है कि हम बच्चे इस देह को कब से सतयुग से लेकर के प्राप्त करते आए हैं। भले सतयुग त्रेता में देह का अभिमान नहीं था, आत्म अभिमानी होकर के हम चलते थे, परंतु द्वापर युग में जब हम पांव रखे तो तब से देह अभिमान शुरू हो गया। यानी लगभग कितने समय से शुरू हो गया, 2500 बरस से, 63 जन्मों से। इतने जन्मों से ये जो देह के अभिमान में आकर के देह के वशीभूत होकर के हम लोग कार्य करते आए हैं, तो अभी अंतिम समय पर ये अंतिम जन्म में संगम युग पर, संगम युग का भी अंतिम समय चल रहा है ना। बाबा भी बहुत बार कहते हैं कि बच्चे टू लेट तो नहीं हुआ, परंतु वर्तमान समय पर लेट तो जरूर हुआ है। तो ऐसे अंतिम घड़ी अंतिम समय इस संगम युग का आकर के पहुंचा हुआ है। तो ऐसे समय पर हमें पूरा अपने पुरुषार्थ के ऊपर लक्ष्य रखकर के चलना बहुत आवश्यक है, क्योंकि समय बहुत नाजुक है। कब इसका अंत होगा क्या होगा कुछ बता नहीं सकते। बाबा ने ये भी हमको बताया है, बाप दादा ने, बच्चे अभी ऐसे समय आ रहा है कि पांचों तत्व एक साथ घेराव करेंगे, तो उस समय पर हम क्या कर सकेंगे। चलो एक तत्व कुछ हमको तकलीफ देता है तो दूसरे तत्वों के आधार से तो कुछ हम उसको उसका सेल्वेशन निकाल सके, परंतु एकदम पांचों तत्व घेराव करे, विनाश की ओर ले चले, तो उस समय पर कौन क्या कर सकता है, क्योंकि हम सबको पता भी है तो इस सृष्टि का अंत तो होना ही है। जब इस कलयुग का अथवा पुरुषोत्तम संगम युग का अंतिम चरण पूरा होगा तभी ही सृष्टि का परिवर्तन होगा, तभी हम सत्युगी दुनिया में जो हमारा लक्ष्य है, श्रेष्ठ देवी देवताओं का पद प्राप्त करने का, वैसे पद हम प्राप्त कर सकेंगे। तो इसलिए सदैव हम ये लक्ष्य रखें कि कुछ भी हो जाए हम बाबा की श्रीमत को नहीं छोड़े। तो उसमें विशेष रूप से जैसे मैंने बताया, मन वचन कर्म से श्रीमत को हम फॉलो करते रहे, पवित्रता को फॉलो करते रहे। और दूसरी बात, बीच बीच में जितना हो सके हम ये लक्ष्य रखें आत्मा अभिमानी बन करके बाबा की याद में रहकर दूसरों को भी उसका वाइब्रेशन पहुंचाई, क्योंकि वर्तमान समय पर केवल स्वयं का पुरुषार्थ करने का समय नहीं रहा है, अभी एक पत्थर दो पंछी का समय है। यानी एक समय पर हमें स्वयं का भी पुरुषार्थ विशेष रूप से करना है और दूसरे आत्माओं के भी सेवा उसके द्वारा होनी है, तो ऐसा समय अभी आकर के पहुंचा हुआ है। तो जैसे मैंने आप सबको बताया, हम सब का लक्ष्य जिस प्रकार से होता है वैसे ही लक्षण बन जाता है। तो ऐसे थोड़ा सा हम विचार मंथन करें तो लक्ष्य जो शब्द है उसका तीन मतलब निकलता है। एक लक्ष्य यानी सबके जीवन में अपना अपना ही कोई उद्देश्य रहता है, तो कोई का लक्ष्य डॉक्टर बनने का होगा, कोई का लॉयर, कोई का इंजीनियर, कोई का एक्टर, कोई का कलाकार, कोई कुछ। तो जैसे बाबा ने हम बच्चों को भी लक्ष्य दे दिया, सबसे ऊंचा लक्ष्य हमारा लक्ष्य है ऊंचे देवता बनने का। तो ऐसे सबका अपने जीवन में कोई ना कोई एक उद्देश्य रहता है, उसको भी हम लक्ष्य कहते हैं। और दूसरा लक्ष्य का मीनिंग ये निकलता है कॉन्सेंट्रेशन यानी ध्यान। कभी कभी हम कोई इधर उधर देखते रहते हैं, ध्यान से सुनते नहीं है, तो हम बोलते हैं ना, अरे आपका ध्यान कहाँ पर है, माना आपका लक्ष्य कहाँ है। तो इससे सिद्ध होता है कि हमारा लक्ष्य भी कैसे रहना चाहिए, परमात्मा की याद के अनुकूल रहना चाहिए। तो ये हमारा विशेष कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए। तो जैसे उसके लिए उदाहरण भी देते हैं कि जैसे अर्जुन ने महाभारत में एक उदाहरण आता है, अर्जुन ने लक्ष्यवेद विद्या सीखी थी तो उसने नीचे तेल में ऊपर का मछली जो घूमता हुआ देखते हुए उसके आंख को लक्ष्यवेद बाण मारा, तीर मारा। तो बाबा भी हम बच्चों को यही सिखाते हैं, भले हम अपने कर्म में व्यस्त है, हम अपने कारोबार कर रहे हैं, फिर भी, क्योंकि बाबा ने तो ये भी नहीं सिखाया कि सब कुछ छोड़ करके हमें कोई सन्यासी बनना है अथवा ऐसे वैसे हमें टाइम निकाल करके ही योग में बैठना है तो सब त्याग करके ही बैठना है, भले थोड़ा समय निकाल करके हमको अलग योग भी करना है वो अलग बात है। इसीलिए ऐसी तपस्या करने के लिए तो यहाँ पर इस तपस्या धाम में, ये तपस्या के आंगन में हम आते हैं, तो वो बात अलग है। परंतु सारे जीवन में तो ये बात ऐसे बैठ करके सदैव करना हो नहीं सकता है। हम कर्म करते हुए भी हमारा लक्ष्य कहाँ रहने चाहिए? बाबा की याद में रहनी चाहिए। तो ये इसको भी हम लक्ष्य कहते हैं। और तीसरा अर्थ निकलता है कि लक्ष्य यानी धन, धनाढ्य को लक्षाधिपति कहते हैं। पहले जमाने में लक्षाधीश्वर, लक्षाधिपति कहते थे तो उनको बहुत बड़ा माना जाता था, बहुत मान मिलता था। परंतु आजकल अरबों करोबों धनवाला होते हुए भी इतना धनवान नहीं माना जा रहा है। क्यों? क्योंकि समय भी उस प्रकार से नाजुक का चल रहा है। आगे चलकर कि ये जो भी कुछ है, जो कुछ हम नोट धन देख रहे हैं तो ये भी तो कोई काम में आने वाला नहीं है, वो भी पता है हमको। ऐसे समय पर हमको बाबा ने कितना महान भाग्यवान बना रहा है, थोड़ा सोचिए कितने हम भाग्यवान हैं। सारे विश्व के मालिक ही नहीं, बाबा क्या कहते बच्चे, आप मेरे से भी ऊंचे हो, यानी तीनों जहान के, तीनों लोकों के मालिक हो। मैं तो ऐसे आप महान आत्माओं के लिए द मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट बनकर के आया हूं, मैं तो अविधेय सेवक बनकर के आया हूं। तो कितना हमारे ऊपर बाबा को प्यार है, सेवा भाव है। तो ऐसे बाप दादा के हम बने हैं तो हमारे जीवन में भी किस प्रकार से सेवा भाव होनी चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं चारों सब्जेक्ट्स में पास होनी चाहिए। केवल एक में पास होने से भी भविष्य में फुल पास नहीं होंगे, उच्च पद नहीं प्राप्त होगा। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, ज्ञान भी हम सुनते हैं और योग भी करते हैं और धारणा भी जहां तक हो सके हम कर रहे हैं, परंतु सेवा के लिए फुर्सत नहीं अथवा धन की सहायता नहीं कर पा रहे हैं। परंतु बाबा कहते हैं मनसा से तो कर सकते हैं, तो ऐसे मनसा से भी कुछ विशेष रूप से ध्यान रख करके करो तो उससे भी चारों सब्जेक्ट्स में जब हम पास होंगे तभी ही भविष्य में हम ऊंच पद प्राप्त कर सकेंगे। तो ऐसे हम लक्ष्य रख करके अपने इस ज्ञान मार्ग में चलते चलेंगे तो हमारे जीवन में सचमुच सुख शांति आनंद अतीन्द्रिय आनंद और संपत्तिवान बन जाएंगे। भले स्थूल संपत्ति की बात नहीं है, ज्ञान की संपत्ति हम प्राप्त कर लेंगे। तो ऐसे महान आत्माएं हम अभी संगम युग पर ही बन रहे हैं, बाबा हमें बना रहे हैं। तो लगता है हम सबको ऐसे बाबा बना रहे हैं, बन रहे हैं, बताइए बताइए, बन रहे हैं बाबा, हम बच्चों को ऐसे बना रहा है, बन रहे हैं ना। तो ऐसे हमारा जीवन जो बन रहा है, तो उसको याद करते हुए भी हम सदैव खुशी में नाचते रह सकते हैं। तो यही लक्ष्य हमारे जीवन में होनी चाहिए। तो समय भी पूरा होता जा रहा है, मैं केवल अंत में आप सबको एक इस बात की शेरी सुना करके समाप्त करूंगी कि चांद को था चांदनी का इंतजार, चांद को था चांदनी का इंतजार, कली को था फूलों का इंतजार, कली को था फूलों का इंतजार, लहरों को था किनारों का इंतजार, लहरों को था किनारों का इंतजार, और हम सब बाप दादा के प्यारे बच्चों को था इस शुभ घड़ी का इंतजार। कौन सी शुभ घड़ी का इंतजार? हमारे मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाप दादा के साथ मंगल मिलाने की शुभ घड़ी का इंतजार, शुभ घड़ी का इंतजार। तो मैं समझती हूँ आप सभी तो इस शुभ घड़ी को अभी भी अनुभव कर रहे होंगे, और 10 तारीख को जो बाप दादा के सम्मुख हम बैठकर जो हम सब के लिए बाप दादा सुंदर सुंदर उन्नति के महावाक्य सुनाएंगे, उस महावाक्य को सुनने की घड़ियों का हम अभी भी इंतजार में है, और उस इंतजार की खुशी में हम सब मनी मन में नाच रहे हैं, है ना। इसीलिए चाहे दिन हो चाहे रात हो, हमें कुछ भी सूझता नहीं। मैं तो समझती हूँ कई भाई बहने दिन में भी नींद नहीं करते हैं, दिन में भी बाबा के कमरे में तपस्या धाम में अथवा और कोई स्थान पर जाकर वहां पर भी योग करते हैं अथवा विचार सागर मंथन करते रहते हैं, बाबा की मुरली के पॉइंट सुनते रहते हैं, सुनाते रहते हैं, विचार मंथन के द्वारा अपने आप को खुश करते रहते हैं, तो वो भी हम देखते हैं। और अमृत वेले भले 3:30 बजे गीत बजता है, परंतु कई बाबा के बच्चे तो 2:30 बजे को ही उठ करके, कोई कहां भी है, इधर है अथवा मनमोहिनी कॉम्प्लेक्स में है और कोई स्थान पर है, तो सॉरी दौड़ दौड़ करके योग के लिए पहुंच जाते हैं। तो क्यों हमें नींद भी अच्छी नहीं लगती और प्यास भी नहीं लगता ज्यादा, और भूख भी नहीं लगती। भले बाबा के घर में हमें जो भी कुछ ब्रह्मा भोजन मिलता है प्रसाद के रूप में, हम शरीर को पालने के लिए, पेट के लिए चाहिए तो हम स्वीकार करते हैं, परंतु लक्ष्य हमारा कौन सा है? लक्ष्य क्या है? लक्ष्य क्या है? हमारे पास यहाँ कुछ भी नहीं है ये लक्ष्य, एक तो क्लास और दूसरा ग्लास है ना। यहाँ पर हम बैठते हैं हॉल में, योग करते हैं, क्लास सुनते हैं, बस इधर से गए वापस, भोजन किए, जलपान चाय पानी वगैरह कुछ किए, बस बाबा की याद में मस्त रहते हैं। दूसरा कुछ है चिंता यहाँ पर? है, है बताइए। इधर आने के बाद भी यदि हमें चिंता है तो फिर और उनको क्या कह सकते हैं? उनको हम भाग्यशाली कह सकते हैं? नहीं, तो हमारा लक्ष्य ही फिर निकल जाता है। निश्चिंतता ही हमारे जीवन का मुख्य लक्ष्य है। उसमें बाबा के घर में आने के बाद तो कभी भी चिंता नहीं होनी चाहिए। देखो हमारे अति प्यारी प्यारी आदरणीय दादियां हैं, जैसे हमारे आदरणीय जानकी दादी जी है, गुलजार दादी जी है, रतन मोहिनी दादी जी वगैरह, मोहिनी दीदी वगैरह जो भी है, हम उनको देखते हैं तो कितनी उम्र हो गई है तो भी कैसे हमारे से मिलते हैं तो कैसे लगता है? ऐसे लगता है कोई बात की चिंता है नहीं, उनको देखते ही हमारी चिंताएं सब दूर हो जाती है। हम भी कोई यदि ऐसे चिंता में होंगे तो भी बस मुस्कुराना शुरू कर देते सब भूल करके। तो इसका कारण उनके प्रैक्टिकल जीवन है। अच्छा, ओम शांति। आप सभी शांत चित्त होकर के सुने इसलिए आप सबको बहुत 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 धन्यवाद है। ओम शांति।
सत्युग में तुमको आना है, शिल्पी ताको अब याद करो, मुक्ति धाम तुम्हें जाना है, अपने सुकर्मों के बल पर ही सत्युग।